जय जय श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्रीपाद रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि की। गुरिदास पंडित तिरुभाव तिथि की जय। झूलन यात्रा महा महोत्सव की। सब वेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। रविवार के इस प्रीति भोज उत्सव में आए हुए सभी भक्तों का राधा गिरधारी मंदिर में स्वागत है। श्रील प्रभुपाद महाराज बड़े गर्वित होकर यह कहते थे कि आइए हमारे लव फिस्ट प्रोग्राम में आइए, आप ऐसा आमंत्रण देते थे लोगों को, तो बहुत गर्व से कहते थे। वैसे प्रभुपाद जी ने जितने भी अपने सेंटर या मंदिर स्थापित किए वहाँ पर ये विशेष नियम है कि प्रातः काल में श्रीमद् भागवतम पर पाठ होता है और संध्या काल में श्रीमद् भगवद गीता पर, प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा। उसके बावजूद भी रविवार के दिन विशेष सत्र रखा गया जिसको रविवार प्रीति भोज लव फिस्ट प्रोग्राम। प्रभुपाद जी जानते थे शास्त्रों के अनुसार कि जो जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के रोग में, भव रोग में पड़े हुए जो जीव हैं, उनको इस भव रोग से उबारने के लिए एकमात्र औषधि जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, श्रोत्र मनो भव औषधि श्रोत्र मनो अभिरामा, भव औषधि श्रोत्र मनो अभिरामा, भव औषधि। भव का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का चक्कर, इसको भव रोग कहते हैं। भले आज बहुत आधुनिक विकास है, विज्ञान ने बहुत प्रगति किया है, बहुत बड़े बड़े रोगों का दवाई निकाला है, लेकिन इस भव रोग का जो मूल सभी दुखों का मूल है, सभी बीमारियों का मूल है भव रोग। हम जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं तब तक ये रोग आते रहेंगे, नया से नया रोग आता रहेगा। तो जब तक हमारा ये मूल भव रोग का इलाज नहीं किया जाता है तब तक ये सारी बीमारियों से हम पीड़ित रहेंगे, तीन तापों से पीड़ित रहेंगे, अनेक क्लेशों से पीड़ित रहेंगे। तो मूल है भव रोग, तो इसका इलाज क्या बताया गया है, छोत्र मनो भव औषधि, भव औषधि। ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इसका मूल औषधि, रामबाण इलाज क्या है, छोत्र, कृष्ण की कथा को सुनना। दो प्रकार है, छोत्र मनो, कृष्ण की कथा को सुनना अर्थात जो भगवद गीता और भागवतम है ये दोनों कृष्ण कथा है। देखिए प्रभुपाद जी का कैसा मैनेजमेंट है, प्रातःकाल भागवतम, संध्या काल में भगवद गीता, और उसका भी जो लाभ नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए विशेष रविवार के लिए प्रीति भोज, उसमें भी यही दोनों मिला कर देना है। तो छोत्र भव औषधि श्रोत्र, भवरोग में जो पड़े हुए जीव हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए जीव हैं, उनके लिए ये राम बाण इलाज, ये एकमात्र औषधि है। कृष्ण कथा छोत्र मतलब सुनना, कान से सुनना, ये दवाई जो है कान से पी जाती है। और छोत्र और मनो अभिरामात, मनो का कान से सुनना और मन से उसका चिंतन करना, ये सुनने का ये विधि है। जो हम भगवान कृष्ण के कथाओं को सुनते हैं तो बाद में उस पर मनन करना है। मुनि सताम, जो कृष्ण की कथाओं को प्रेम पूर्वक मननशील होते हैं उनको मुनि सताम, महाराज दीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, मुनि सताम। एक मुनितर होते हैं, एक मुनितम होते हैं, एक मुनि सताम। सबसे ऊपर वो है जो कृष्ण की कथाओं को प्रेम पूर्वक प्रेम भाव से उसका मनन करते हैं, वे मुनि सताम सभी मुनियों में श्रेष्ठ। तो सूत्र सुनना और मनो मन से उसका चिंतन करना, स्मरण करना, तो इससे क्या लाभ होता है? तो कहते हैं अभिरामात, ये आनंद प्रदान करने वाली है। अभिरामात मन को और हमको आनंद प्रदान करने वाली है, है? ये भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं ये जीव को आनंद प्रदान करती है, मन को आनंद प्रदान, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है वास्तविक ये आनंद। ये ऐसी कथाएं हैं, भगवान की लीला हैं। मुक्त संग मनोरमम, भागवत के आठवें स्कंद में भगवान जब वामन देव आए थे बलि महाराज के यज्ञशाला में, तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते मनो मुक्त संग मनोरमम, भगवान का जो सौंदर्य है या उनका जो गुणावली है, उनका चरितावली है, ये है मुक्त संग। बड़े बड़े मुक्त पुरुषों को भी आनंद प्रदान करता है, मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित कर लेता है, उनको भी अपने में रमा लेता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, और चतुर कुमार ये भी ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में भी एक उनका भी निराकार ब्रह्म में जो लीन रहते हैं तो उनको भी एक आनंद का अनुभूति होता है। लेकिन ऐसे ब्रह्म सुख का आनंद लेने वालों को भी जो आकर्षित कर देती है मनो विरामा। चतुर कुमार ब्रह्म लीन रहते थे लेकिन जब वे बैकुंठ में गए और भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ तुलसी का गंध जब उनके नासिका में गया और भगवान का दर्शन जब किया तो उनका ब्रह्म सुख फीका हो गया। जो भगवान के दर्शन से और तुलसी, उनके चरणों के तुलसी ग्रंथ से उनको जो सुख मिला, जो आनंद मिला, उससे उनका ब्रह्म सुख फीका हो गया। या सुखदेव गोस्वामी ने जब कृष्ण के विषय में वो दो श्लोक सुने, फरहा पीड़म और अहो बकियम स्तन काल कूटम, ये दो श्लोक जो थे, एक भगवान का गुणानुवाद और एक भगवान के सौंदर्य के विषय में, वरहा पीड़म नटवर वपु वरहा पीड़म, ये भगवान के सौंदर्य के विषय में श्लोक था, और अहो बकियम स्तन काल कूटम, ये भगवान के स्वभाव और गुण के विषय में। ये दो श्लोक पढ़ाकर वेदव्यास महाराज ने भेजा था सुखदेव को सुना हुई। तो जब इन्होंने ये कृष्ण के विषय में सुना तो इनका भी ब्रह्म सुख फीका हो गया, आकर्षित हो गए। तो इस प्रकार मनो विरामात, ये भगवान कृष्ण की कथा गुणावली चरितावली जो है ये मन को आनंद प्रदान करने वाली है, और वास्तव में भवरोग की ये सही सही औषधि है, दवा है। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने इसको हमें प्रदान किया, कृपा किया हमारे पर। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का सत्र इस्कॉन के प्रत्येक सेंटर में प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल, लेकिन हम लोग गृहस्थी हैं नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए विशेष प्रीति भोज। इसलिए प्रभुपाद ग्रवित होकर कहते आइए, अब आप नहीं कह सकते संडे को लव फिस्ट में आइए, प्रभु जी हम तो बहुत देर उठते हैं, कोई बात नहीं दोपहर। ये कितने दयालु होते हैं संत, कितने दयालु, इनका दया का कोई सीमा नहीं। तो इस प्रकार ये प्रीति भोज उत्सव प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किया गया और इसमें आए हुए हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। विशेष जो सत्र अभी चल रहा है समय, बहुत ही उत्तम समय, बहुत ही वरिष्ठ समय, विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए, सारे जगत के लिए। ऐसे से ये कृष्ण उत्सव अभी प्रारंभ है, है? जन्मोत्सव, बलराम जी का जन्मोत्सव, कृष्ण का जन्मोत्सव, और उसके पहले ये झूलन यात्रा जन्मोत्सव, ये सब उत्सव चल रहे हैं अभी, और वो भी चतुर्मास, उसमें भी श्रावण मास, इसको श्रीधर मास, ये मास जो चल रहा है इसको श्रीधर मास कहते हैं। अभी प्रभु जी पढ़ रहे थे श्रीधर मास में, झूलन यात्रा का वर्णन पढ़ रहे थे, तो बोला श्रीधर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक प्रभुपाद एक लेटर लिखते हैं जयप्रताप महाराज को झूलन यात्रा के विषय में। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीधर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक ये झूलन यात्रा उत्सव करो, ये भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनको बहुत अच्छा श्रृंगार सजाकर, बहुत अच्छा मंडप बनाकर, उसमें झूला में झुलाइए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसलिए उनको झुलाने से एकदम शीतल शीतल वायु प्राप्त होता है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं लेटर में। तो उनके लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये झूलन यात्रा किया जाता है। इसके पीछे कई लीलाएं भी, कई लीलाएं हैं। तो झूलन यात्रा के विषय में अभी हम एक अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की एक लीला सुन रहे थे, शुद्ध सेवक प्रभु और हम चर्चा कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि झूलन यात्रा उत्सव क्या है। ऐसे हमारे कृतज्ञ दास प्राय बताते हैं कि झूलन यात्रा मतलब हमको जिसने चैतन्य महाप्रभु को दिया वो है झूलन यात्रा। एक लीला वो भी है, अब बार बार सुनते हैं राधा जी को मनाने के लिए कृष्ण सन्यासी का रूप लेकर गए थे, वो लीला है। तो जो आज हम श्रवण कर रहे थे तो उसमें अक्षर पुरुषोत्तम महाराज लिखते हैं कि नारद जी प्राय वृंदावन में आया जाया करते थे और जाकर राधा जी से जरूर मिलते थे। जब कृष्ण ने देखा कि ये नारद जाकर राधा जी को मिलता है तो कृष्ण ने राधा जी को सचेत कर दिया कि इस नारद से सावधान रहना, ये कहीं हमारे बीच में मतभेद पैदा ना कर दे, इसका काम यही है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। लेकिन राधा जी कृष्ण की बात नहीं सुना, उनको नारद जी पर पूरा विश्वास, वो इसी प्रकार नारद जी से मिलते थे और नारद जी से बात सुनते थे। एक बार क्या हुआ कि नारद जी वीणा बजाते हुए वृंदावन में विहार कर रहे थे तो उनके वेणु वादन से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नारद जी से कहा कि मांगो नारद, तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी वर मांग लो हमसे। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु नहीं, अभी तो आशीर्वाद दीजिए, मेरे को आवश्यकता होगी तब ये वर मांग लूंगा। तो कृष्ण कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। तो यही श्रावण का मास चल रहा था और राधा जी की सखियां सभी झूला की तैयारी कर रही थी, झूला को बांधा, बहुत अच्छी तरह से सजाया, और राधा जी अभी झूला में, झूलन में आने के लिए घर पे तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रहे थे। तब तक तो देखा नारद जी ने कि यहाँ झूला तैयार हो रहा है और ललिता, हाँ, विशाखा आदि सखियां झूला तैयार कर रही हैं, और नारद जी ने तुरंत जाकर, अभी राधा जी नहीं आई हैं, तो जाकर कृष्ण से मिले और कृष्ण से कहा, कृष्णा आपने हमको एक वरदान देने के लिए कहा था। बोला हाँ, तो आज मुझे वो दे दीजिए। बोला क्या चाहते हो? बोला आज आप झूले में ललिता के साथ झूलिए, ये वरदान दे दीजिए, और जल्दी तुरंत झूला तैयार है, चलिए चलिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, ये वरदान दिया था तो क्या करें, आए उधर झूला तैयार है, ललिता जी विशाखा सब तैयार, तो कहा कि भाई नारद जी ने ये वरदान दिया है तो ललिता के साथ झूलना पड़ा। तो वो जैसे ही ललिता जी को लेकर झूल रहे हैं, नारद जी भी झूला रहे हैं, सब सखियां भी झूला रही हैं, कीर्तन कर रही हैं और बहुत आनंद छाया हुआ है, ललिता और कृष्ण झूल रहे हैं झूले में। ऐसे में मौका पाकर नारद जी वहां से खिसक गए, वो सब आनंद में है, वो खिसक गए वहां से जाकर राधा जी के पास गए। राधा जी तैयार हो रही है, बोला राधे तुम किसके लिए तैयार हो रही हो, आज हम झूलन यात्रा है, हम हमारे प्रियतम के साथ झूला। क्या प्रियतम के साथ झूला, वो तो ऑलरेडी पहले से ललिता के साथ झूल रहे हैं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। बोला नहीं मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करूंगा, देख लो। राधा जी तुरंत बाहर आई और थोड़ा जाकर वहां ये ललिता कुंड के पास झूला यात्रा हो रही थी। राधा जी ने दूर से देखा, सत्य बताते नारद, राधा जी बहुत कुपित हो गई, नाराज हो गई, चली गई वापस अपने घर में। वहां झूलते 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 बहुत देर झूले, देर हो गई। कृष्ण ने पूछा अभी तक राधा क्यों नहीं आई, अभी तक राधा क्यों नहीं आई, बहुत देर हो चुका है अभी तक नहीं आई। तो कृष्ण गए राधा जी के पीछे जाकर, वो तो उठ कर बैठी है। अरे राधे हम कितना इंतजार कर रहे थे, तुम अभी तक आई नहीं, झूला तैयार है। बोला जाओ हम तुमसे बात नहीं करते और हमसे कभी मत मिलना। कृष्ण को समझने में देर नहीं लगी, हाँ हम जब झूला झूल रहे नारद जी भी वहां से चले गए, कहीं यही तो नारद नहीं आया था। राधा मैं तुमको पहले ही कहता था कि इस नारद की बात से सावधान रहना, नारद यहाँ आया था। बोला क्यों, मैंने अपनी आंखों से देखा, नारद जी थोड़ा झूठ बोलते हैं, ये सब नारद जी का ही काम है, मेरे से प्रदान भी मांग लिया था कि ललिता के साथ झूमो झूला पर बैठो, और तुमसे आकर ये कहा, ये नारद जी ने हमारे में झगड़ा लगाने के लिए कहा, तुम मानो मैं सत्य कहता हूँ, चलो अब मैं तुम्हारे साथ झूलूंगा। तो इस प्रकार फिर भगवान और राधा कृष्ण आकर झूलते थे। कभी कभी ऐसी लीलाएं, कभी कभी भिन्न लीलाएं भी हैं, जैसे चंद्रावली ने एक बार अपने झूलन के लिए राधा जी भी तैयार थी, लेकिन चंद्रावली ने एक बार रोक लिया कृष्ण को बीच में से, और बीच में से रोक लिया तो झूला पर बिठाया, झूला कैसा झूला बनाया, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए थे, तो व्यंजन खिलाने लगी, लो लो ये पेड़ा खाओ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद ये रसमलाई खाओ, ये देखो कैसा चक्कर, तो देखो इस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजन थोड़ी थोड़ी देर में चखाने में और झूला झूलाने में बातों में इतना मशगूल हो गए, त्यां बहुत देर हो गई कृष्ण को। और उधर राधा जी को पता चल गया कि कृष्ण तो नहीं आए, तो बोला ललिता के साथ चंद्रावली के साथ झूल रहे। तो अब राधा जी ने कह दिया कि विशाखा से अभी आने मत देना इसको, कृष्ण यहाँ आए तो बिल्कुल मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, और इस प्रकार नहीं देखना चाहते। लेकिन अंदर अंदर तो राधा जी भी दुखी हैं, पीड़ित हैं। जब कृष्ण आए तो निकाल दिया, बोला नहीं बाहर गेट से ही बात, अंदर तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती है। ऐसे लीला बड़ी विस्तार से है, लेकिन फिर आगे कृष्ण भी दुखी हैं, वहां राधा जी भी दुखी हैं। बीच में पूर्णमासी मिले और पूर्णमासी से कहा कि अरे देवी कैसे भी करके हमको राधा से मिलाओ। तब पूर्णमासी ने योजना बनाया, ऐसा करो तुम ये सब वेश त्याग करो और सन्यासी का वेश धारण करो, सर को मुंडन कराना पड़ेगा, गैरवे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, और इस प्रकार तो मैं राधा जी से एक बार मिला, बोला मिला दूंगी चलो, लेकिन ये वेश धारण कर लेता, अब तुम्हारे उस वेश में तो मिलेगी नहीं राधा, चेहरा ही नहीं देखना चाहती तो मिलोगे कैसे, इसलिए चेहरा और हुलिया सब बदल दो। इस प्रकार पूर्णमासी ने युक्ति बनाई और फिर लेकर गए। विशाखा से कहा कि तुम्हारी ठाकुरानी अरे हमारी ठाकुरानी बहुत दुखी है, बहुत ऐसे उनका कष्ट कैसे दूर होगा। तो बोला मैं एक ज्योतिष लाया हूँ, वो बताएगा कि इसका कष्ट कैसे दूर होगा। तो दूसरे तो किसी पुरुष को अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन ठीक है ये ज्योतिष है सन्यासी है तो ले जाते हैं। ले गए अंदर तो राधा जी कैसे बोला हाथ दिखाओ हम हस्त रेखा से दिखा दे दो, ऐसा राधा जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ नहीं हम तो मस्तक की रेखाओं से देखते हैं कि क्या दुख कैसे दूर होगा। बोला चेहरा दिखाओ, राधा जी ने जब चेहरा देखा और आंख से आंख मिली तो पहचान गई, ओ ये तो वही छलिया है, कभी श्याम सखी बनकर कभी चूड़ी बेचने वाला बनकर आज ये वेश बनाकर आया है। तो राधा जी क्रोधित, ठीक है तुम ये वेश बनाया, तुमको ये भी वेश धारण करना पड़ेगा। और इस प्रकार राधा जी की कृपा से वही संन्यास वेश चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में धारण किया। तो ये झूलन यात्रा से हमको चैतन्य महाप्रभु मिले। और भी चैतन्य महाप्रभु की इस विषय में लीला है। एक बार झूलन यात्रा में ही झूला झूल रहे थे, उसी समय राधा जी के हृदय में बहुत संसार के जीवों के प्रति कृपा उदित हो रही थी, और उस समय भी झूलन यात्रा ही था। उसमें भी कृष्ण राधा के हृदय में प्रवेश किए, क्योंकि राधा का हृदय पिघला हुआ सोने के समान था, और प्रवेश करके जब बाहर निकले तो वो गौरांग महाप्रभु। ऐसी ये बड़ी बड़ी विस्तार से लीलाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज और भी थोड़ी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं बलराम जयंती भी आ रहा है, तो उसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और आज हमारे एक महान दो आचार्यों का तिरुभाव तिथि है, श्रीपाद रूप गोस्वामी। ये गौड़ीय वैष्णव के सबसे महान आचार्य हुए। इतने महान आचार्य हैं कि जो भी गौड़ीय वैष्णव हम लोग जो भक्ति करते हैं, तो हमको रूपा अनुगा कहा जाता है। हम रूपा अनुगा हैं। रूपा अनुगा का अर्थ है कि हम रूप गोस्वामी के अनुगत होकर भक्ति करते हैं। जो भी भक्ति का हमको नियम पालन, जो भी सिद्धांत, जो भी कृष्ण लीला के गूढ़ रहस्य, जो कुछ भी आज पूरे विश्व में प्रभुपाद ने जो विस्तार किया है, वो सब रूप गोस्वामी की देन है। और रूप गोस्वामी ने जो दिया है वो चैतन्य मनो अमिष्टम स्थापितम ये न भूतले। मंगलाचरण में हम गाते हैं चैतन्य मनो अमिष्टम। चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अमिष्ट था, जो उनकी इच्छा थी, उसके अनुसार रूप गोस्वामी ने उसको स्थापित किया है। तो रूप गोस्वामी हमारे इस परंपरा के महान आचार्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बलराम हैं वो हमारे आदि दीक्षा गुरु हैं, लेकिन रूप गोस्वामी हैं वो हमारे शिक्षा गुरु हैं हम सबके। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी के विषय में आप सभी प्राय जानते हैं, लेकिन आज उनका तिरुभाव तिथि है। उन्होंने हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए कई कई ग्रंथ लिखे हैं, और कई ग्रंथों में कृष्ण राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को प्रकाशित किया है, गुह्य भावों को प्रकाशित किया है। विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, और भी कई शास्त्र हैं। अभी हम कई शास्त्र उन्होंने लिखे हैं जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति परंपरा में शिरोमणि शास्त्र हैं। इस प्रकार उन रूप गोस्वामी का आज तिरुभाव तिथि है। आज ही हम देख रहे थे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीनों भाई थे, और ये इतने बड़े विद्वान थे कि वहाँ के मुगल बादशाह द्वारा उनको मलिक का पद भी दिया गया था। प्रभुपाद जी ने लिखा, आज परफेक्ट जो हमको ये बता रहे थे, मलिक ये उर्दू शब्द है। जैसे अंग्रेजों में जो बहुत पद में ऊंचा है, धन में ऊंचा है, या विद्वान व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, विशेषकर राज्य शासन के भीतर, तो उसको लॉर्ड का पद नहीं दिया जाता है अंग्रेजों में, वैसे ही मुसलमानों में मल्लिक का पद भी दिया जाता है, जिसका बहुत वर्चस्व है राज्य में, और जो धनी व्यक्ति है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, और सत्ता में जिसका वर्चस्व है। ये प्रातःकाल के सत्र में श्रीमान कुंभदास प्रभु भी बता रहे थे कि ये इनका बहुत सम्मान था मुगल साम्राज्य में। एक होम मिनिस्टर थे और एक ये थे वित्त मंत्री थे, ये बड़ा बड़ा पद इनको प्राप्त था, इसलिए उनको मल्लिक पदवी दिया गया था, साकर मल्लिक ऐसा। तो वैसे थे ये ब्राह्मण परिवार से। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये भारद्वाज गोत्र से थे, मतलब जो भारद्वाज ऋषि से जो वंश आया है उस वंश में थे। वहीं प्रभुपाद जी अपना वंश के बारे में लिखते हैं कि हम गौतम ऋषि के वंश से हमारा वंश आया है ना। ये जितने भी मानव समाज है, ये मानव समाज ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वज कौन है? सारे ऋषि मुनि हैं। इसका प्रमाण है कि आज भी हमारे गोत्र में कश्यप, दधीच, गौतम, भारद्वाज ये सब लगता है, हैं? ये आज हमारे बच्चों को विद्या के नाम पर अविद्या पढ़ाई जाती है और हमारे वंशज बंदर बताए जाते हैं, हैं? जो मीडियम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना हमारे बच्चे सब, उनको क्या सिखाया जाता है? हम सब बंदर की ओर आ रहे। प्रभुपाद का एक विदेशी के साथ बहुत चर्चा हो रहा था, डार्विन फिलोसॉफी के अनुसार डार्विन ने लिखा कि हम बंदर से आए हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम ऋषि मुनियों से आए हैं। बहुत चर्चा हुआ, बहुत चर्चा हुआ, वो नहीं माना। तो प्रभुपाद ने कहा तुम बंदर की औलाद हो, हम तो ऋषि मुनियों की औलाद है। तब वो चुप हुआ, चुप ही नहीं हो रहा है तो क्या करें। प्रभुपाद जी सब तरीका जानते थे, किसको कैसे चुप कराया जाता है। तो फिर वो चुप हो गया। तो बंदर की औलाद कहेगा तो वो कुछ कमिट भी नहीं कर सकता, वो खुद कह रहा है कि बंदरों से आए, तो वो क्या बोलेगा फिर। तो इस प्रकार ये भारद्वाज, कहीं कहीं ऐसा भी कि वो सारस्वत ब्राह्मण थे रूप गोस्वामी। तो जो ये ब्राह्मण कृष्ण भावना से जुड़े होते हैं तो उनको सारस्वत कहते हैं। तो प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि जैसे नमस्ते सारस्वत देवी, तो ये है सारस्वत, जो कृष्ण भावना से बिल्कुल संकलन है उनको भी सारस्वत कहा जाता है। इस प्रकार रूप गोस्वामी के विषय में संक्षिप्त में, और गोरीदास पंडित के विषय में तो बहुत प्रसिद्ध एक लीला है, हैं? ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के भक्त थे, बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त थे। एक श्लोक कोट किया था हमने, महानिधि प्रभु ने हमको एक श्लोक दिया है। बहुत ही उच्च कोटि के, चैतन्य चरितामृत में उनके भक्ति के लिए लिखा गया है कि गोरीदास पंडित यानेर प्रेम दंड भक्ति, प्रेम दंड भक्ति, प्रेम भक्ति और उदंड भक्ति, बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति थी। कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति, उनके पास भक्ति रूपी महाशक्ति थी। वो किसी को, वो कृष्ण से प्रेम प्राप्त भी किए और कृष्ण का प्रेम देने में भी वो समर्थ, ऐसे गोरीदास पंडित थे। जो मायापुर से पहले कोई एक सालिक, अभी तो अंबिका कालना करके स्टेशन है, उसके निकट ही एक शालिग्राम करके जो गांव था वहाँ ये रहते थे। और एक बार की प्रसिद्ध घटना है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके घर आए थे। तो घर आए तो बहुत दिन रुके, उन्होंने बहुत उनका सेवा किया, और उसके बाद जब ये जाने लगे तो गोरीदास पंडित ने कहा नहीं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आपकी सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता, आप मत जाइए। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनके आग्रह पर कहा कि ठीक है, मैं मेरा ही विस्तार करके तुमको दे देता। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपना ही विस्तार किया और गौर निताई के श्री विग्रह रूप में कहा कि आप इनकी सेवा करो, हमारी सेवा, या इनका संग मेरा संग समान है, मैं इनसे भिन्न नहीं हूं। तो भी वो नहीं माना, नहीं नहीं, अगर आप इससे भिन्न नहीं है तो फिर इनको जाने दीजिए, आप रह जाइए। भक्त भी बड़े चतुर होते, वो जानते थे कि विग्रह रूप में तो कैसे चर्चा होगा। बोला नहीं, आप अगर मेरे को कह रहे हैं कि मेरे में और विग्रह में कोई भेद नहीं है तो ठीक है, विग्रह को विहार करने दीजिए, आप रह जाइए। तो कहा ठीक है, अभी दोनों खड़े हैं, दो विग्रह के रूप में, दो दोनों भाई रूप में। तो कहा बोलो अब किसको जाने दो। बोला विग्रह को जाने दो। विग्रह चल कर जले जाने लगे तो उनके मन में अरे ओरिजिनल वो होंगे, ये विग्रह है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तुम वापस आओ, तो ये जाए विग्रह। तो फिर वो चलने लगे तो इसको देखा तो ये विग्रह रूप में खड़े हैं। इस प्रकार कई बार हुआ, फिर थक कह रहे बाप, ओरिजिनल कौन है और विग्रह कौन है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके कहा मेरे और विग्रह में कोई भेद नहीं है, और इस प्रकार विग्रह रूप में गोरीदास पंडित के यहाँ रहे। आज भी वो विग्रह, ये जो अंबिका कालना स्टेशन है, वहां पर मंदिर है गुरुदास पंडित के द्वारा बना, वहां ये विग्रह हैं। तो उन गुरुदास पंडित का भी आज तिरुभाव तिथि है, साथ साथ में अभी ये आज वर्तमान उत्सव के सिवा आज हम थोड़ा बलराम जयंती के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं 21 तारीख को बलराम जयंती है, हाँ सभी को पता है, पूर्णिमा 21 तारीख को पूर्णिमा, कई कई लोग 20 तारीख को भी पूर्णिमा करने वाले हैं। ये दो कैलेंडर मत चलते हैं ना। 20 तारीख को जो पूर्णिमा है वो संध्या काल में 6 बजे से है, और 21 तारीख को प्रातः काल 8 बजे तक ये पूर्णिमा है। इसलिए वैष्णव मत के अनुसार, वैष्णव ज्योतिष के अनुसार, जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को सम्मान दिया जाता है। तो 21 तारीख को यहाँ पूर्णिमा मनाया जाए, बलराम जयंती, बलराम जी का आविर्भाव है। तो बलराम जी की लीला कथाएं, आविर्भाव की कथाएं तो उस दिन होगी ही। 21 तारीख को बलराम जयंती है, मंदिर में फेस्टिवल है, दोपहर तक उपवास रहेगा, बलराम जी के लीला कथाओं पर प्रवचन होगा, और फिर दोपहर के बाद सबके लिए फिस्ट भी होगा। लेकिन आज हम उनके उनके पूर्व बलराम जी के जो प्लेटफॉर्म है अवतार का, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये कृष्ण जन्म के संपर्क में भी है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत श्लोक आया है, बहुत अद्भुत श्लोक है, उसको हम लेते हैं बलराम जी की। गर्भ संकर्षणात तंबे, बोली उच्चारण करते हैं, गर्भ संकर्षणात तंबे प्राहु संकर्षणम्भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोश्रयात। गर्भ संकर्षणात तंबे प्राहु संकर्षणम्भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोश्रयात। गर्भ संकर्षणात तंबे प्राहु संकर्षणम्भुवि रामेति लोक रमणाद बलभद्रम बलोश्रयात। इस श्लोक के शब्दों का अर्थ और अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गर्भ संकर्षणात्, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए जाने के कारण, ताम उनको वे निसंदेह प्राहु लोग कहेंगे। इस श्लोक के शब्दों पर ध्यान रखना, बहुत ये अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक ये बाद में पता कैसे अद्भुत श्लोक है। संकर्षणम, संकर्षण भूवि संसार में, राम इति राम कहलाएगा, लोक रमणात् लोगों को भक्त बनने में समर्थ बनाने से, बलभद्रम बलभद्र कहलाएगा, बल उस्त्रशात प्रचुर बल के कारण, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण राम कहलाएगा, और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसमें बलराम जी के नाम आए हैं, कितने नाम आए हैं, बलराम को संकर्षण, बलराम या कभी कभी राम नाम से भी विख्यात होने के कुछ कारण हैं। महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में जब राम को बलराम कहा जाता है तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। भले ही भगवान राम के भक्तों को इसमें आपत्ति हो, किंतु बलराम तथा भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इस स्थल में बलराम को राम भी कहा गया है, रामेति। अतः भगवान बलराम को भगवान राम कहना बनावटी नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने भी तीन रामों का, परशुराम, रघुपति राम और बलराम का उल्लेख किया है। ये सभी राम हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकमामयं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुंदरादी वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे। कृष्णा, तो ये जो श्लोक है ये अद्भुत क्या है? इसमें अद्भुत का अर्थ है दिव्य है, लौकिकता से परे श्लोक है। हालांकि भागवतम का हर शब्द दिव्य है। क्या कोई बता सकता है कि ये किसके द्वारा उच्चारित है और किसके साथ चर्चा हो रहा है? ये जो श्लोक उच्चारित है ये बैकुंठ में चर्चा हो रहा है। कहाँ चर्चा हो रहा है? गोलोक वृंदावन में, है ना। और किसका किसका चर्चा है आप तो रोज सुनते हैं, कृष्णा और योग माया के बीच। बैकुंठ में कृष्णा और योग माया के बीच में चर्चा हो रहा है। पहले ही अद्भुतता ये है। दूसरा अद्भुत का अर्थ था लौकिकता से परे, लौकिक नहीं। जैसे यहां पर क्या चर्चा होता हो रहा है, बलराम जी का नामकरण किया जा रहा है। क्या हो रहा है? कहां पर नामकरण? इस पृथ्वी पर जो बलराम जी आएंगे तो उनके नाम क्या क्या होंगे वो भगवान नाम दे रहे हैं। पहली अद्भुतता, छोटा भाई बड़े भाई का नामकरण कर रहा है। ऐसा कहीं सुना आपने? जन्म कर्म च मे दिव्यम। बलराम जी बड़े भाई के रूप में आने वाले और उसका नामकरण कौन कर रहा है? क्या अद्भुत बात नहीं है? एक अद्भुत बात। दूसरी, नामकरण कब होता है? अरे सब जानते हैं, गृहस्थी तो जन्म के पहले के जन्म के बाद। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद। हमेशा नामकरण तो जन्म के बाद होता है ना, तो हमने सोचा कि बलराम जी के जन्म के बाद जो कथा हुई, लेकिन जो जन्म के पहले की है वो पहले कर देते हैं। जन्म तो 21 तारीख को होगा, लेकिन चूंकि नामकरण पहले भगवान ने किया है तो हम भी वही करते हैं। तो यहां पर थोड़ा प्रसंग का रसास्वादन करेंगे। प्रसंग है, आप सभी प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं। यहां पर योग माया को बुलाकर भगवान कृष्ण आदेश दे रहे हैं। ये लीला उस समय की है जब वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में थे और देवकी के छह पुत्र छह गर्भ कंस के द्वारा मारे जा चुके। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, कि कंस इन छह पुत्रों को नहीं मारता था शायद, क्योंकि पहला पुत्र जब वसुदेव जी लेकर गए तो कंस ने लौटा दिया था, मुझको इसके आठवें पुत्र से भय है। लेकिन नारद जी ने जाकर ऐसा भिड़ाया कि कंस ने छह और छह पुत्रों को मारा। तो वहां प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसका दोष नारद जी को नहीं देना चाहिए। नारद जी ने कहा कि इसका कोई भी पुत्र आठवां पुत्र हो सकता है, ऐसा कमल भी साथ में लेकर गए थे घुमाते हुए। तो इसके पीछे नारद जी दो कारण थे, एक तो नारद जी चाहते थे कि भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाएं, तो उनकी लीला हम देखेंगे, और दूसरा एक इतिहास एक रहस्य नारद जी जानते थे। संत जो होते हैं सभी जीवों पर बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, कोई किसी श्राप से बंधा हुआ है या तो कैसे उनको मुक्त कराना या उनको मुक्त की योजना बनाते हैं, ये कैसे मुक्त होंगे, ये संतों का हृदय बड़ा दयालु। तो वो एक इतिहास जानते थे कि जो मरीचि जैसे उनके भाई हैं नारद जी के, मरीचि जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो मरीचि उनके भाई, और उनके भाई के छह पुत्र थे, उनको श्राप था, इसलिए नारद जी उन पर कृपा कर वो जल्दी से श्राप से मुक्त हो जाएं। क्या श्राप था उनको? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के छह पुत्र थे। एक बार की घटना है कि ब्रह्मा जी ने अपने से एक तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा प्रकट की, और उस अप्सरा के सौंदर्य से आकृष्ट होकर आलिंगन करने के लिए ब्रह्मा जी उसके पीछे दौड़ गए। ये छह जो लड़के थे वो ब्रह्मा जी को देखकर हंसे, छी 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 छी, ऐसा ब्रह्मा, इस प्रकार ब्रह्मा जी का खिल्ली उड़ाया। हमको कभी कभी लगता है कि ये ठीक कर रहे थे ये लड़के, ऐसा लगता है ना, कभी नहीं लगना चाहिए है? ये बहुत गूढ़ विषय होते हैं कोई कोई। कभी भी जो महापुरुष हैं या महान व्यक्ति हैं उनके कार्यकलापों को साधारण स्थिति में खींचकर नहीं देखना चाहिए। धर्म का जो सिद्धांत है वो बहुत गूढ़ है, बहुत गुह्य है। धर्म के सिद्धांत को हर कोई ठीक ठीक नहीं समझ सकता, या हर देश काल स्थिति के अनुसार धर्म के सिद्धांत को समझना बड़ा कठिन है। किसी भी बड़ा व्यक्ति का कार्यकलाप है, महान व्यक्ति का कार्यकलाप है, और उसको भी हम हमारे लेवल में लेकर देखेंगे तो ये ठीक नहीं है, ऐसा इतिहास बताता है। जैसे एक प्रसिद्ध घटना है गरुड़ जी, गरुड़ जी महाभागवत है, भगवत पार्षद हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, और उनका स्थिति बहुत ऊंचा है। वे एक बार वृंदावन में आए, यमुना जी में आए, यमुना जी से एक मत्स्य को पकड़ लिया, तो शौबरी वहां तपस्या कर रही थी। शौबरी ने देखा, ओ गुरु पाप कर रहा है, या शौबरी का मत्स्यों के प्रति थोड़ा दया, उनका हित करने के लिए गरुड़ जी को श्राप दिया, तुम आज के बाद यहां नहीं आओगे। क्यों? मत्स्य मछलियों का हित करने के लिए उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया। गरुड़ कोई साधारण व्यक्ति है? हालांकि गरुड़ जी में इतना शक्ति है कि वे उनके श्राप का प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन वैष्णव कौन होता है? वैष्णव का वैष्णव वो होता है जो जहां तहां अपने प्रभाव को नहीं दिखाता है, अपने स्वभाव को प्रकट करता है। कई ऐसे वैष्णवों के चरित्र मिलते हैं। चित्रकेतु को जब देवी पार्वती ने श्राप दिया तो चित्रकेतु कोई कम व्यक्ति नहीं थे, वे साक्षात भगवान शंकरषण के दर्शन करके उनकी कृपा प्राप्त करके आ रहे थे। जो भगवान शंकरषण का कृपा पात्र है वो देवी पार्वती के श्राप का क्या प्रतिकार नहीं कर सकता। लेकिन इतने समर्थ होने के बाद भी हाथ जोड़कर नम्र भाव से, हे माते जो भगवान की इच्छा है वो होता है, और नमस्कार किया, प्रणाम करके वहां से चले गए। ये है वैष्णव। वैष्णव को कहीं भी अपना वहां है, वैष्णव मतलब मैं प्राय कहता हूं जो अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं, अपने प्रभाव को छिपाते हैं। जितने भी हमारे आचार्य हुए देखिए क्या सब आचार्य जो है अपना स्वभाव बताते हैं और अपने प्रभाव को है। कृष्णदास कविराज क्या वो तो साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति, लेकिन अपने को कहते हैं मैं तो मल का कीड़ा क्या है वो। अरे बाप रे, हमको तो उनके लिए ये शब्द वापरने में लज्जा लगती है, हम ऐसा कैसे कहें वो ऐसा। तो ये वैष्णवों का स्वभाव होता है, गुरुजी कुछ बोले नहीं, चुपचाप हां करके चले। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, जिन मछलियों का हित करने के लिए उन्होंने गरुड़जी को श्राप दिया, सारी मछलियों पर आफत आई। गरुड़जी के ना आने से कालिया वहां आ गया। कालिया वहां क्यों आया, गरुड़जी के ना आने से, और कालिया के विष के प्रभाव से सारी मछलियां मर गई, दूसरे जीव को भी कष्ट हुआ, आसपास के पेड़ पौधों को भी कष्ट हुआ, सारा यमुना का जल उस क्षेत्र का दूषित हो गया और सभी जीव दुखी हो गए। क्या करना चाहते थे सोबरी, हित करना चाहते थे, लेकिन हित क्या, कैसे हित करोगे तुम, ऐसे महान वैष्णव का अवहेलना करके किसी का हित किया जाता है। गुरुजी का स्थिति वो नहीं जानते। अब देखिए मछलियों का भी हित नहीं कर सके, ये बात छोड़िए जिन मछलियों का हित करना चाहते थे उनके कारण उनका भी पतन हो गया, उन मछलियों के कारण। धर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है, हर स्थान पर आप धर्म का विषय हर व्यक्ति के साथ लागू करने में देश काल स्थिति का विचार करना पड़ता है। ऐसे विचार किए बिना कोई कहे हाँ ब्रह्मा जी भी ऐसा ही व्यक्ति है हमारे जैसा, नहीं है भाई। ब्रह्मा जी महान है, वो गलती कर सकते हैं, गलती को सुधार भी सकते हैं, और हम गलती कर गए गिर गए तो हमको उठना मुश्किल हो जाता है। एक बार माला छूट गया तो फिर उठाना भारी पड़ता है, दिखते ही नहीं, वो गए। तो किसी भी महान व्यक्ति तो इस प्रकार, लेकिन इन छहों ने ब्रह्मा जी का अवहेलना किया, हंसे तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में चले जाओ, और इस प्रकार उनको असुर योनि में जाना पड़ा। तब वे हिरणाक्ष के पुत्र काल ने नहीं, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष के पुत्र काल नैमी के पुत्र बने ये छह के छह, और काल नैमी के पुत्र बने उसके बाद जब देवासुर संग्राम हुआ। आप सभी जानते हैं देवासुर संग्राम किस लिए हुआ था, कौन बताएगा। देवासुर संग्राम इस इतिहास में दो संग्राम बहुत भयंकर हुए, देवासुर संग्राम और पृथ्वी पर महाभारत, इसके से ऐसा युद्ध आज तक कोई नहीं हुआ। उस देवासुर संग्राम, ये समुद्र मंथन के बाद हुआ, उस समय असुरों के लीडर कौन थे, ये फैमिली बलि महाराज और ये सब साथ थे। बलि महाराज जो हैं ये तो ये जो हिरणाक्ष के बलि महाराज थे उसमें काल नैमी, इन छहों का पिता जो काल नैमी था वो भगवान विष्णु के सुदर्शन से उस संग्राम में मारा, उस समय मारा गया काल नैमी। और उसके बाद बलि महाराज को जब भगवान ने तीन कदम भूमि मांगा और उसके बाद बलि महाराज को जब सुतल लोक में भेजा, उस समय इन छह काल नैमी के छह पुत्रों को भी सुतल लोक में भेजा था। उसके पहले की एक घटना है कि ये ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्त होने के भले वो आए असुर कुल में, लेकिन हैं तो ब्रह्मा जी के कुल के, तो वो विष्णु की आराधना करते थे इसलिए विष्णु की आराधना करते थे। तो उस समय हिरणाक्ष ने जाकर, हिरणाकश्यप या हिरणाक्ष ने जाकर उनको रोका था कि तुम हमारे कुल के शत्रु की उपासना करते हो, लेकिन वो सुना नहीं उनका बात। तब तुम अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हो, इसलिए अपने पिता के हाथ से ही मारे जाओ, ऐसा हिरणाकश्यप ने उनको श्राप दिया। लेकिन उस श्राप के बाद जब ये बलि महाराज के साथ भगवान वामन देव का लीला हुआ, उस समय बलि महाराज के साथ ये छह कालनेमी के पुत्र भी सूतल लोक में गए, और फिर यही कालनेमी कंस के रूप में अवतरित हुआ, और वही जो श्राप हिरणाकश्यप का था कि वो पिता के हाथों से मारा जाए, तब ये जो छह पुत्र थे, ये कालनेमी जो कंस बना, जो इनका पिता था, इसके हाथों ये छह पुत्र मारे गए। लीला ये है, और जो सिद्धांत है वो इससे भी भारी है। सिद्धांत ये है कि देवकी जो है वो भक्ति स्वरूपा है, और ये जो क्षण गर्भ हैं ये हमारे लिए छह अनर्थ हैं। भक्ति में आने वालों के लिए ये छह अनर्थ हैं, और जो कंस है ये भय का प्रतीक है। ये तीनों देखिए बहुत समझने जैसा सिद्धांत है। भक्त जो होते हैं, हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमारी वृद्धि नहीं होती है, तब हम परेशान हो जाते हैं, अरे यार इतना साल से भक्ति कर रहा हूँ कोई डेवलप नहीं हो रहा है, क्या है। तब भक्त भयभीत हो जाता है कि ये मेरे अंदर ये अवगुण है, बार बार क्रोध आता है, ऐसा होता है, ईर्ष्या करता हूँ, भक्तों से झगड़ा करता हूँ, वो करता हूँ, लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, क्रोध करता हूँ, मैं कोई ठीक से पालन इस प्रकार वो, फिर इसके कारण मैं गिर जाऊंगा, मेरा भक्ति नष्ट हो जाए, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये इस अनर्थों से भयभीत कंस भय का है। लेकिन जब भक्त भय, उसको भय होता है इस अनर्थों से, तो जब भक्त इन अनर्थों से जब निवृत्त होना चाहता है या निवृत्त होता है, तब भक्ति में उसका रुचि बढ़ता है, और जब भक्ति में रुचि आता है, निष्ठा हो जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है। तो इस प्रकार कंस रूपी भय से देवकी भयभीत है, और देवकी जो है वो भक्ति स्वरूपा है, और इस भक्ति में इस छह अनर्थों का नष्ट होना बहुत आवश्यक है, तब भगवान आते हैं। इस सिद्धांत को प्रकट करने के लिए ये इस प्रकार की लीला, ये दोनों है, इतिहास भी है, लीला भी है। तो इस प्रकार जब ये छह गर्भ मारे जा चुके हैं, उसके बाद में सातवें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। कई कई आचार्यों का बहुत बहुत टीका है, धामकम मम धामकम का, जब वे सातवें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में आए, तब योग माया को कृष्ण ने बुलाया वैकुंठ में, और योग माया को बुलाकर कृष्ण ने आदेश दिया, गच्छम देवी वज्रम भद्रे। बहुत भगवान कितना बहुत सुंदर बोलते हैं, देखिए भगवान है, स्वामी है, लेकिन बोलने की, गच्छम देवी वज्रम भद्रे, हे शुभ करने वाली देवी, आप ब्रज में जाओ। कौन सा व्रज? गोप गोप अलंकृतम, जो गायों से, गोपियों से और गोपों से अलंकृत है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है भागवत में कि क्या वास्तव में ये जो पृथ्वी है या इसकी शोभा क्या है, अलंकार क्या है। भगवान के भक्त गाय और भगवान की जो भक्ति है, वे ही वास्तव में इस पृथ्वी की शोभा है। ये जो भक्ति विमुख या लफंगे या फालतू फैशन करके घूम रहे हैं, माथे पर तिलक नहीं है, वो नहीं है, कंठी नहीं है, ये कोई सिंगार नहीं है, बहुत फैशन कर देते हैं, और बाल को 5,000 रुपया देकर इतना ऊंचा और ये करना और वो करना, जींस पैंट और टाइट टी शर्ट, ये पृथ्वी की शोभा नहीं, ये तो पृथ्वी का प्रदूषण है। ध्यान रखना चाहिए भक्तों को भी, गोप गोपी अलंकृत मतलब ये सब गोपों की वेशभूषा, गोपियों की वेशभूषा से पृथ्वी अलंकृत है, या गायें जो चरती हैं तो इससे ये पृथ्वी का अलंकार है, भगवान के भक्त जब विचरण करते हैं तो तब पृथ्वी सुखी होती है। कोई भी अलंकार करता है तो उसको थोड़ा आनंद आता है, मेकअप वेकअप सजा करता तो उसको तो पृथ्वी आनंदित होती है जब भगवान के भक्त विचरण करते हैं। कोई टाइट जींस पैंट पहन के युवती या टी शर्ट पहन के, इससे पृथ्वी दुखी होती है। बिल्कुल गोपी वेश है, कई साड़ी है ऐसा है, या भक्त जब धोती कुर्ता है, तिलक है, कंठी, तब ये तो बहुत बहुत इतिहास हम क्या बता। जब भगवान तिरोधा भगवान जा रहे थे तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं ब्रज में आऊंगा, तो द्वारका से जब भगवान वापस ब्रज में आए थे भगवान की अप्रकट लीला में, और ब्रज में आकर फिर रास हुआ, फिर रास होने के बाद अब भगवान सबको अपने पार्षदों को लेकर वैकुंठ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तब माता पृथ्वी जो है वहां प्रकट हुई थी फिर से, क्योंकि पृथ्वी माता ने ही भगवान को अवतरित कराया था, और अब भगवान जा रहे तो पृथ्वी माता प्रकट हुई और प्रकट होकर भगवान के सामने दुख व्यक्त करने लगी कि आपका चरण जब स्पर्श होता था तो मुझे सुख मिलता था, अब आप चले जाएंगे, कलयुग आने वाला है, असुर लोग यहां विचरण करेंगे, असुर लोग मेरा भोग करेंगे, साले थर्ड क्लास सब ड्रेस पहन के यहां घूमेंगे, मेरा अलंकार क्या रहेगा, मेरा सुख क्या रह जाएगा। तब भगवान ने आश्वासन दिया माता पृथ्वी, तुम दुखी मत हो, जब वैष्णव वेशभूषा धारण करके मेरे भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 इस प्रकार माला करते हुए भले मीरा रोड जैसे नगर में भी निकलेंगे तो पृथ्वी को थोड़ा सुख होता है, सुकून होता है। ये भगवान के शब्द हैं। है? और एक मैं प्रसंग, अभी टाइम हमको बहुत हो रहा है। सुदामा जी जब द्वारिका गए तो आपको पता है कुछ नहीं दिया भगवान ने, ऐसा ही फटी धोती और ऐसा का ऐसा वापस रिटर्न कर दिया, सामने कुछ नहीं दिया। भगवान का स्वभाव है सामने आकर हमको कुछ नहीं देते हैं, लेकिन देने वाले सब वही हैं, सामने नहीं देते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि कोई दूसरा दे रहा है, नहीं नहीं वही देने वाले, लेकिन भगवान ने सामने कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी को वहां संकोच हो रहा था कि इतना ऐश्वर्यशाली मेरी धोती में तो जगह जगह गांठ लगा हुआ है, अब यहां से जाओ वो भगवान तो अपनी पटरानियों को बुलाकर सेवा करो, सेवा करो, वो लज्जित हो रहे थे, अरे बाप रे ये 16,108 पटरानियों को उनके लिए प्रसाद लाओ, तो सुदामा जी तो बोले नहीं नहीं मेरे को जाने दो, घर जाने दो, रहने की इच्छा है लेकिन लज्जित हो रहे हैं, ये सब लक्ष्मीया मेरी सेवा करें, अरे बाप रे सोने के पलंग पर बैठो, भगवान नीचे बैठते हैं, चरण दबाते हैं, चरण धो रहे हैं सभी, लाइन लाइन लगा। अब सुदामा जी नहीं अब नहीं मुझको जाने दो यहाँ से, तो भगवान तो जा रहे हैं, तो रुक्मणी जी और वो भगवान सुदामा जी को विदा देने के लिए गेट तक आए, गेट तक आए, अब सुदामा जी को कहा अब जा, तो सुदामा जी जा रहे हैं और रुक्मणी और कृष्ण खड़े हैं, सुदामा जी बहुत दूर तक चले गए, वो चल रहे थे तो उनके पांव की धूल का कण दिखाई दे रहा था रुक्मणी जी को, तब तक कृष्ण वहां खड़े रहे। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु अब चलो, अब क्या देख रहे हो, अब तो वो चला गया, अभी तो दिखे भी नहीं रहे, चलो, तो भी कृष्ण खड़े हैं। तो कहा नहीं मेरा सुदामा देखो पैदल चल कर जा रहा है, उसके पांव की धूल के कण उड़ते दिखाई दे रहे हैं, कितना प्रेम भगवान को भक्तों से। तो रुक्मणी से रहा नहीं गया, रुक्मणी ने कहा इतना ही अपने भक्त से प्रेम करते थे तो एक रथ क्यों नहीं दे दिया, रथ में बैठकर चला जाता, पैदल चलाकर भेज दिया। तो कृष्ण ने कहा सुदामा जितने कदम यहां पृथ्वी पर रखेगा इतना तो पृथ्वी सुखी होगा और इतना पृथ्वी पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा स्मरण करते हुए जा रहा है। क्यों जा रहा है? मेरा स्मरण करते हुए जा रहा है। हम लोग तो मंदिर आएंगे और कहेंगे हमारे बेटे को पास कर देना और फेल हो गया तो हम बाहर निकलेंगे गाली देते हुए, अरे क्या मैं इतना माला करता और मेरा लड़का तो फेल हो गया, उसका वो ये हो गया और वो बीमार। कृष्ण ने सुदामा को फूटी कौड़ी नहीं दिया था उधर, जब सुदामा वो तो घर पे गए तो पता चला, लेकिन वहां से तो कुछ नहीं दे के भेजा ना, तो भी वो क्यों स्मरण कर रहे हैं? भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सुदामा जी स्मरण कर रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने परम कृपालु हैं, वो जानते हैं हमारे स्वभाव को कि अगर धान या हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया तो फिर मंदिर भी नहीं आएगा, लव फीस्ट में भी गायब होता है ना। जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है या पैसा ज्यादा आ जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है, या फिर धन है तो फिर संसार के भोग, धन आता है तो संसार के भोगों में ऑटोमेटिक मन चला जाता है, फिर ये चाहिए वो चाहिए, टीवी भी चाहिए चैनल भी चाहिए, क्योंकि फिर वो ऊंचे लोगों के बीच में बैठता है तो फिर शादी में भी कैबरे वाले ला देते हैं, भक्त करते करते हमने देखा भक्तों की शादियों में भी डांस करने वाला हो नहीं माँ के गीत, क्यों? ये धन के कारण। हमने देखा एक भक्त की शादी में था, इधर गाइंदर ही देख रहा था, बहुत दुख लगा, हमको आमंत्रित किया, मैं तो वहां खड़ा नहीं रह सकता था, अरे बाप रे ये क्या किया तुम लोग, लेकिन बोले पैसा है तो फिर क्या करूंगा। तो सुदामा जी ये विचार कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि अगर मेरे को धन दें या पैसा दे दिया होता तो मैं बिगड़ सकता था, मेरी भक्ति छूट सकती थी। भगवान परम दयालु हैं, जीव को इस संसार के भोगों में फंसाना नहीं चाहते हैं वो, नहीं इसलिए कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू थैंक यू, इस प्रकार कृष्ण को धन्यवाद देते स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा स्मरण बहुत ही ऊंच कोटि का ये है, इसलिए कृष्ण सुदामा के लिए जितेंद्रिय शब्द आया है भागवतों में। और सुदामा जी जो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए थे तो कोई भौतिक इच्छा से नहीं गए थे, उनकी पत्नी शांता ने बहुत आग्रह किया लेकिन नहीं जाऊंगा किसी चीज के लिए नहीं जाऊंगा, बोला घर में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो बहुत धनी है देते हैं तुम जाओ, नहीं धन के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत आग्रह किया। तो सुदामा जी ने विचार क्या विचार किया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, जाने का उनका ये पीछे विचार था, क्या विचार था, मंदिर राधा गिरधारी जाएंगे तो राधा गिरधारी के दर्शन होंगे, अयम ही परमो लाभो, यही तो परम लाभ है, पुनर्भव न दर्शनम, आपका दर्शन होता रहेगा। तो इस विचार अयम ही परमो लाभ, ये सुदामा जी बोल रहे हैं अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, उनकी कीर्ति जिनकी उत्तम श्लोक से कीर्ति गाई जाती उनका दर्शन मिलेगा यही परम लाभ है, इसी विचार से गए थे और इसी विचार से आ रहे हैं। तो वो कृष्णा कहते हैं रुक्मणी ये जितने कदम भर रहा है इतना पृथ्वी पवित्र हो रहा है, इतना पृथ्वी सुखी हो रहा है। तो भक्त जब इस प्रकार पृथ्वी पर कृष्ण का स्मरण करते हुए माला करते हुए निकलते पृथ्वी को सुख मिलता है। गोप गोपी अलंकृतम, मैं इस पर बोल रहा था कहां का कहां चला गया। तो इस प्रकार भगवान ने आदेश दिया कि वो ब्रज जो ब्रज गायों से गोपियों से और गोपों से अलंकृत है उस ब्रज में जाओ। बस उस ब्रज में जाकर क्या करना है, हमारा अंश देवकी के गर्भ में है उसको देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। यहाँ पर अभी हम एक आचार्य का टीका पढ़ रहे थे, हमारे मन में भी कई सालों से संशय था, आप लोगों के मन में भी हो सकता है कि रोहिणी को जब पुत्र हुआ तो कैसे हुआ, ये तो अलग रह रही थी वसुदेव जी के साथ में, लेकिन एक आचार्य की आज हम टीका पढ़ा तो उसमें लिखते हैं कि वसुदेव देवकी और रोहिणी और अन्य पत्नियां भी साथ में थी उनके पहले, लेकिन जब देखा कि देवकी भी गर्भवती है और रोहिणी भी गर्भवती है तब वसुदेव जी ने सोचा कि अगर दोनों को बच्चा होगा तो ये कंस दोनों के बच्चे मार डालेगा, तो कम से कम रोहिणी का बच्चा बचा रहे, इसलिए चुपके से अन्य पत्नियों को अन्य अन्य जगह और रोहिणी को नंद महाराज के भवन में शिष्य ने भेज दिया था। और अब गर्भवती है लेकिन वहां रह रही है और यहां पर देवकी जी के भी गर्भ है, तो अब योग माया को कृष्णा आदेश दिया कि देवी वहां जाओ और देवकी के गर्भ में मेरा ही अंश, और वहां पर लिखते माम धाम का धाम, धाम शब्द है, धाम शब्द का अर्थ होता है आश्रय या विस्तार भी होता है, बहुत धाम शब्द के हमारे आचार्यों ने टीका किया है, और जो बलराम जी हैं भगवान के धाम हैं स्थान, जैसे देवकी के गर्भ में ये छह असुर ये आ चुके हैं साधारण जीव, उसके बाद देवकी के गर्भ में भगवान को आने के लिए उस स्थान को बनाने के लिए भगवान के हर प्रकार की सुविधा करने के लिए पहले बलराम जी आते हैं, बलराम जी भगवान के हर रूप में सेवा, सैया के रूप में, पादुका के रूप में, छत्र के रूप में, इस प्रकार कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इस कृष्ण आने वाले हैं, जैसे कोई बड़ा मंत्री आने वाला है तो पहले से उसका है स्टेज बनाया जाता है, वो किया जाता है, ऊपर छतरी हो, ऐसा हो, बड़े नेता के लिए किया जाता है उनके सेवक। तो इस प्रकार बलराम जी कृष्ण आने वाले हैं तो उनका वो स्थान, धाम का अर्थ स्थान भी होता है, वो स्थान प्रिपेयर किया, तैयार किया। और अब कृष्ण चाहते हैं कि ये तो जो बलराम है ये तो रोहिणी नंदन है, नित्य रोहिणी का पुत्र है, इसकी माता तो रोहिणी है, तो अब ये नित्य रोहिणी का पुत्र बना रहे, इसके लिए अब इसको ले जाकर वहां स्थापित कर दिया जाए। ये काम कौन करेगा? योग माया। तो योग माया को आदेश दिया कि तुम, लेकिन ये काम करना इतना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि योग माया ने भगवान के इस आदेश को कहा ओम इति, भगवान का जो आदेश है ये वेद आदेश है, भगवान का शब्द ही वेद है, और उसने प्रसन्नता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा हां प्रभु मैं ये करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। तो भगवान ने भी अपनी लीलाओं में बहुत स्थान दिया, फिर बताया कि मैं इसके बाद मैं देवकी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, तुम यशोदा की पुत्री रूप में प्रकट होना, तुम्हारा ये रोल है, ये सब है, आज भी श्लोक में ये है, योग निंद्रिय इसमें मंत्रिणा, इसमें भी प्रातः बताया जा रहा था कि योग माया ने कंस को भ्रम में रखा, अंधेरे में रखा है, सुबह बताया अंधेरे में रखा, क्या अंधेरे में रखा, हालांकि वो उनका भक्त था, लेकिन अंधेरे में रखा कि तुमको मारने वाला कहीं प्रकट हो चुका है, ये नहीं बताया कि यहीं प्रकट होकर वहां गया, ये बताया ही नहीं, जबकि वो उनका भक्त है, लेकिन इसने अंधेरे में रखा। अगर इससे हम समझें तो समझ सकते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों को कभी अंधेरे में नहीं रखते हैं, ध्यान रखिए जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार, कृष्ण है वहां कोई अंधकार नहीं, कोई माया नहीं, कोई अंधेरे अंधेरा है ही नहीं, लेकिन देवी ने कंस को अंधेरे में रखा कि वो जन्म ले चुका, भाई क्यों सत्य क्यों नहीं बताया, अगर उनकी उपास्या थी तो सत्य बता देना चाहिए कि वो नंद महाराज के घर वो लड़का है, तो वो इतना उत्पात, कितना उत्पात मचाया कंस ने, क्या क्या उसको बेचारा बिला दुखी हो गया और उसका नींद राम कर दी, उसकी देवी नहीं उसका नींद राम, जब बताया कि जन्म ले चुका उस दिन से उसका नींद राम, सोना बोना सब आराम हो गया, तो इतना साल मैंने आपका उपासना किया देवी जी उसका क्या, कोई नींद राम है? ये जो ब्रजवासी थे 100 साल से इंद्र की पूजा करते थे, कितना साल से, फिर इंद्र एक बार नहीं किया तो इंद्र ने क्या किया, सब खत्म कर दूंगा, तो 100 साल पूजा किया उसका क्या, जरा विचार तो करो, 100 साल पूजा किया उसका क्या, यही लेकिन ये इतिहास होने के बाद भी सुनते हैं मुंडी मुंडी हिलाकर, कुछ ग्रहण नहीं होता है, उतरता नहीं है, अभी कमल लोचन प्रभु बता रहे थे कि एक व्यक्ति के पास हम गए कि लो गीता लो, भक्त था, तो उसने कहा नहीं हम गीता नहीं पढ़ते, तो क्या पढ़ते हम, वो दूसरा एक बुक है वो पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर सुनना चाहते तो उसने कहा हम शिक्षा पत्री पढ़ते हैं, शिक्षा पत्री में लिखा है कि गीता भागवत हमारा शास्त्र है उसको पढ़ना चाहिए, तुम क्या शिक्षा पत्री पढ़ते हो, फिर क्या अर्थ है पढ़ने का, शिक्षा पत्री में स्पष्ट सजानंद स्वामी लिखते हैं कि गीता भागवत को रोज पढ़ना चाहिए, अगर कोई स्वामीनारायण वाला है तो जानते बहुत लोग शिक्षा पत्री, ये लिखा है कि नहीं लिखा बताइए, हाथ उठा के मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और वो व्यक्ति कहता नहीं हम गीता नहीं पढ़ते हम तो शिक्षा पत्री पढ़ते, तो इसका अर्थ क्या है पढ़ने का, खाली रटन करना है क्या, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, वो तो वो हो गया। तो इस प्रकार ये सब इतिहास सुनते हैं, लेकिन फिर योग माया को आदेश दिया, और इस प्रकार योग माया को आदेश देते हुए अब जो मेरा अंश है देवकी के गर्भ में उसके नामकरण यहां पर करो, वहीं देवी के सामने हे देवी जिसको तुम, जिस गर्भ को संकर्षणा तुम देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी, इस आकर्षण के कारण वो संकर्षण कहलाएगा, और प्राहु संकर्षणम भूवि, वो भूवि मतलब संसार के लोग भविष्य में उसको संकर्षण के नाम से जानेंगे, और रामेति लोक रमणादे, क्योंकि लोगों को आनंद प्रदान करने वाला होगा, विशेषकर भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे हर लीला में हर समय। ये एक एक शब्द के और लीलाएं आती हैं, जैसे कालिया दमन के समय में किस प्रकार सबको आनंद प्रदान किया, डूबने से बचाया सबको बिल्कुल है, इस प्रकार हर विपत्ति में जो बलराम जी थे ये सब ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते थे। तो लोगों को आनंद प्रदान करेगा, विशेषकर ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम एति। और बल में बहुत ही बलशाली होगा, भक्ति चाहिए तो इसमें भक्ति के लिए बल की बहुत आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल की, वो जिम खाना वाला बल नहीं, तो वो बल बलराम जी देते हैं। तो वो बलराम जी ही के पास मांगना चाहिए, अगर हमारा ठीक माला नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो बलराम जयंती के बीच खूब मांगी, बहुत उस दिन सेल लगेगा, 21 तारीख को खरीदिए, उस दिन यही मांगिए कि वो माला ठीक से हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। इसलिए बलभद्र बलोत्श्रया, बल में बहुत उत्कृष्ट हैं, सभी प्रकार का बल प्रदान करने वाले हैं, भक्ति में आपको जो बल चाहिए वो प्रदान करेंगे, तो इसलिए इसका नाम बल होगा। इस प्रकार समय हो चुका है, आज बहुत सी सेवाएं हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये बलराम जी के जन्म के पूर्व उनका नामकरण भगवान ने किया और यहाँ पर हमने भी किया सब मिलकर। इस प्रकार भगवान ने उनको 3 नाम दिए, संकर्षण, रामेति और बलभद्र। इस प्रकार नामकरण हो रहा है, अभी देवी वहाँ से रवाना होंगी और 21 तारीख को बलराम जी का स्वागत होगा। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है योग माया और महामाया। तो जो भक्त के ऊपर भक्तों को प्रभावित करती है वो है योग माया, और जो अभक्तों को प्रभाव में रखती है वो है महामाया। सिंपल डिफिनेशन, एकदम साधारण, हर व्यक्ति माया के अंडर में है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो उनको जो अपने अंडर में रखती है वो योग माया है, और जो अभक्तों को अपने अंडर में रखती है वो महामाया है। महामाया कभी भक्तों के साथ संपर्क, उनके साथ कुछ नहीं करती है, और योग माया अभक्तों के साथ कुछ नहीं करती। योग माया का संपर्क, हाँ, जैसे गीता में भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थम योगिम देवीम प्रकृतिम आश्रिता। भगवान के जो भक्त हैं वे योग माया के अंदर में रहते हैं, और जो अभक्त हैं वे भी माया के अंदर, लेकिन वो महामाया के अंदर में रहते हैं। ये दोनों का ये कार्य है। अरे संक्षिप्त में बताया, समय नहीं है। अनाउंसमेंट है प्रभुजी,
मैं करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।